महाराज अंग तो यहाँ तक कहे हैं, जब बेन इनका पुत्र खराब निकल गया तो वो कहते हैं, भागवत का वाक्य है, जिन लोगों को पुत्र प्राप्त नहीं है वो लोग निश्चित ही भगवान विष्णु का खूब भजन किए होंगे पहले, निश्चित, क्योंकि कुपुत्र से मिलने वाले दुख का उनका अनुभव नहीं होता है। एक कुपुत्र से कितना दुख होता है इसके अनुभव से वंचित है। निश्चित उन लोगों ने भगवान की आराधना किया होगा कई जन्मों तक। तो पुत्र उत्पन्न होना वास्तव में एक बहुत बड़ा बंधन भी होता है यदि पुत्र नलायक निकल गया तो पहले के पूर्वज जो स्वर्ग में रहते हैं उनको भी नरक में ढकेल देता है। जैसे अर्जुन कहते हैं ना, इतने वीर मर जाएंगे तो उनकी स्त्रियां विधवा होंगी और फिर उनसे वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे, वर्ण शंकरों के कारण पतंति पितरौ ये सम, ऐसा कहते हैं, नरक नरक में पितर गिर जाते हैं, लुप्त पिंड उदक क्रिया, पिंड और उदक देने की क्रियाएं लुप्त हो जाती। और इतने मरने की जरूरत नहीं थी चित्रकेतु महाराज के पुत्र के लिए, जितनी इच्छा पुत्र की थी उसमें से करोड़वा हिस्सा भी अगर विष्णु को पाने की होती तो हमें कोई शोक नहीं होता, क्योंकि हाय हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। अंत में अंगिरा जी की शक्ति को समझ करके कहते हैं कि मैं पूर्वजों के साथ नरक में गिर गया हूं, आप हमको तार दीजिए। कैसे तारिए? प्रजया, प्रजय के द्वारा तारिए। तो अंग्रेज कह सकते थे ठीक है मैं वरदान दे देता हूं या तुम भजन करो हरे कृष्ण करो सब तर जाएंगे, कई पीढ़ी के लोग तर जाएंगे। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, प्रजया पुत्रेण, हमको पुत्र दीजिए उसके द्वारा सब पूर्वज तरेंगे। इसके अंदर कोई नहीं तरा तो पुत्र तत्काल तुरंत मर जाएगा, इतना आग्रह मन में बसा हुआ था। अंग्रेज कह सकते थे कि ठीक है चलिए हमारे साथ और वृंदावन में रहिए भजन कीजिए, आपका सब पूर्वज कर जाएंगे, आप भी सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, हमको प्रजा दीजिए, उनके कहने का आशय था उनको पुत्र दीजिए। श्री सुखवास इत्यर्थिता से भगवान कृपालुर ब्रह्मण सुत श्रपित्वाचर उन्त्वाष्टम त्वष्टारम अजयद विभु। जब राजा चित्रकेतु इस तरह से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, पैरों में गिर गए, तो स्वाभाविक ही अंग्रेज कृपालु हैं, ब्रह्म रहस्यतः ब्रह्मा जी के पुत्र है, सहज कृपा उनमें आई। तो उन्होंने चरु पकाया, चरु कहते हैं दूध में जो चावल पकाया जाता है उसमें घी डाल करके और क्या क्या थोड़ा गुड़, उसको चरु कहते हैं। उस दूध में एक बूंद भी पानी नहीं होता है, शुद्ध दूध होता है, उसमें पकाया जाता है। उस चरु को पकाए मंत्र द्वारा, अरे छोटा सा यज्ञ किए, उस यज्ञ में उन्होंने त्वष्टा की पूजा किया, इंद्र के भाई है त्वष्टा, एक देवता है, तो उनकी पूजा किए, पूजा करके और हवन किए उस यज्ञ, उस खीर से हवन किए, और यज्ञ में बचा हुआ जो खीर था चरु था उसको अंगिरा जी ने कहा कि ये ले लीजिए और आप अपनी पत्नी में से किसी एक को खिलाइए। यह सब प्लान था महाराज चित्रकेतु को विरक्त बनाने का, ऐसा नहीं है कि सबको दे दे एक एक कण और सबको संतान हो जाए, वो समर्थ थे, कर सकते थे, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे, चित्रकेतु का उद्धार करना चाहते, जानते थे कि यह फर्स्ट क्लास का डिवोटी बनेगा, ये बहुत उच्च कोटि का वैष्णव बनेगा भक्त, आज पुत्र के लिए रो रहा है उसी तरह भगवान के लिए रोएगा, वो तो देख लिए। इसीलिए चरु थोड़ा सा बचा है जग में और कहे कि किसी एक पत्नी को खिला देना। तो राजा को तो बहुत खुशी हुई, डूबते को तिनके का सहारा, एक भी पुत्र तो होगा ना, चलो बहुत हुआ, वंश डूब रहा था, बच जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत खुश हो गए। समर्थ थे अंगिरा जी, इसने विभू शब्द का प्रयोग किया, विभू समर्थ। तो राजा ने लिया तो ज्येष्ठा श्रेष्ठा चयाराग्यो महिषी नाम च भारत नामना कृत द्वितीय यज्ञ सिस्टम अदा द्विज। चित्रकेतु को उन्होंने नहीं दिया वो चौर। यहां लिखा गया है कि अंगिरा जी ने पूछा, राजन आपकी कितनी रानियां हैं? तो राजा ने कहा वो तो एक करोड़ है। एक करोड़ है। अच्छा, इसमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन है? तो राजा ने पहला विवाह किया था जिस लड़की से, उसका नाम था कृतदूती। तो एक को खिला दीजिए। तो राजा ने स्वयं ही कहा कि आप अपने हस्त कमल से इसको दे दीजिए, आप स्वयं दे दीजिए। यह भी राजा चित्रकेतु की बुद्धि थी। उन्होंने सोचा कि अपने हाथ से अगर एक रानी को दूंगा तो दूसरी रंज हो जाएंगी, वो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की अंगिरा जी से कि स्वयं दे दिया जाए, कृपा करके आप दे दीजिए। तो बुलाए कृतदूती को, ज्येष्ठा, वो सभी रानियों से ज्येष्ठ थी, सबसे पहले विवाह हुआ था, और श्रेष्ठा च, और श्रेष्ठ भी थी। श्रेष्ठ का क्या अर्थ है? वह पतिव्रता थी, परम सुंदरी थी, सब तरह से पढ़ी लिखी थी, श्रेष्ठ भी थी। ज्येष्ठा श्रेष्ठा च, महिषी नाम या राज्य, राजा की महिषियों में जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थी, हे भारत, हे महाराज परीक्षित, उस कृतदूती को उन्होंने दे दिया। यज्ञोच्छिष्टम अदात द्विज, द्विज ने दिया अर्थात अंग्रेजी ने दिया, यज्ञ का उच्छिष्ट अंग्रेजी ने दिया, जिसका नाम कृतदूती था उसको, और दे करके कहा खाओ। उस स्त्री ने खा लिया। इसके बाद नहीं, अभी नहीं खाया, अभी वो लेगी, नहा धोवा करके पूजा करके तब खाएगी। लेकिन खीर दे करके अंगिरा जी ने कहा, अथाह नृपतिम राजन भवित कस्तवात्मज, हे राजन तव एक आत्मज भविता, आपको एक पुत्र होगा। हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम, जो आपको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। हर्ष भी देगा, सुख भी देगा। तो राजा ने इसका मतलब ये समझा कि जन्म होगा तो हर्ष तो होगा ही, और बाद में हो सकता है श्रृंखल हो जाए, मेरी बात न माने तो दुख होगा, लेकिन चलो पुत्र तो होगा ना। लेकिन अंग्रेजी के कहने का आशय था कि ये जन्म के समय सुख देगा लेकिन कुछ ही दिन में मर जाएगा, तो उससे आपको बहुत सुख होगा। पर चित्रकेतु ये समझे नहीं, उन्होंने सोचा कि नहीं पुत्र होने की अपेक्षा थोड़ा बदमाश ही पुत्र हो तो चल जाएगा, क्या किया जाए, तो उसने देख लेंगे, शोक होगा तो दबाएंगे जैसे भी होगा। लेकिन अंग्रेज ने कहा हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम, ये आपको एक पुत्र होगा जो शोक भी देगा और हर्ष भी देगा। प्र द का अर्थ ही होता है देने वाला, प्रौद्योगिकार थे प्रकृष्ट रूप से, आपको बहुत हर्ष देगा वो जन्म के समय, और इसके बाद मर जाएगा आपको बहुत दुख देगा। ये भीतर से वो कह रहे हैं। तो राजा समझे नहीं, यह कह करके ब्रह्म सुत जय, ब्रह्मा जी के पुत्र चले गए, अंग्रेज चले गए, तुरंत चले गए। सात्प्राशना देव चित्रकेतोरधारयत गर्भम कृतदूतिर्देवी कृतिकाग्नेरिवात्मज। सायति, जब अंग्रेज चले गए तो वह भी जो हाथ में या कटोरी में जैसे भी खीर लिया होगा, तो वह भी तत्प्राशना देव, उसको खाने मात्र से चित्रकेतु से उसको गर्भ हो गया। कई वर्षों तक गर्भ नहीं हुआ उस स्त्री को चाहे किसी को, लेकिन चरु खिला करके जब संग हुआ चित्रकेतु के साथ उसका, तो गर्भ हो गया। ठीक वैसे ही उस देवी कृतदूती ने गर्भ को धारण किया जैसे अग्नि के द्वारा कृतिका ने गर्भ धारण किया था। यह ऐतिहासिक घटना है, उसको बता रहा। तस्या अनुदिनं गर्भ शुक्ल पक्ष वो दुप बब्रभे सुरसेने सेज शासन का नृप। तो गर्भ दिन पर दिन बढ़ने लगा, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है रोज रोज, वैसे गर्भ बढ़ने लगा बहुत आनंद के साथ। स्वतः एक ऋषि का तेज था और उनका वरदान था ऋषि का और चित्रकेतु महाराज का वीर्य था तेज का, इसके कारण गर्भ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, बच्चा बढ़ने लगा। अथ कल्पावृत कुमार समझाए तो समय आने पर बच्चा हुआ, बहुत तेजस्वी था, बहुत अच्छा। तो जब जन्म लिया तो पूरे सूरसेन प्रदेश में जहां तक राज्य इनका था सब जगह आनंद छा गया, बधाई के बाजे बजने लगे, राजा पूरा खुश हो गए। ये कथा मैं कल प्रारंभ करूंगा, किस तरह दान दे रहे हैं, खुश हो गए, उनको हर्ष हो रहा है और किस तरह इनको महाशोक हो गया, ये सब एक ही साथ कल कथा आएगी। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। आनंद जनयन और कृतदूति को दिया खाने के लिए, तो उस चरु को खाने के बाद कृतदूति को गर्भ हुआ और वह गर्भ है शुक्ल पक्ष में बढ़ने वाले चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। तो काले उपावृत समय आने पर कुमार समझायत, बच्चा जन्म लिया। सम अजायत का अर्थ है सम्यक अजायत, बहुत अच्छा तरह से जन्म लिया बच्चा, अस्पताल में नहीं जाना पड़ा, घर पर ही जन्म हुआ। जनयन सूर सेना नाम सुनवताम परमामोदम, वह बच्चा जन्म लिया तो इसके साथ ही सुरसेन प्रदेश के रहने वाले जितने भी लोग थे, जनता थी, और जन्म इस जन्म की बात को सुनी तो उनको भी वो परमानंद दे रहा था अपने जन्म के साथ। जनयन का अर्थ उत्पन्न करते हुए, जन्माते हुए। बच्चा जन्म लिया तो सुरसेन प्रदेश के लोगों में आनंद भी जन्म लिया। कैसा आनंद? परमानुदम, मुद का अर्थ होता है आनंद सुख है। तो इससे सहज समझ सकते हैं कि जब उस देश के प्रजा को बच्चा के जन्म लेने पर परम आनंद हुआ तो राजा को कितना आनंद हुआ होगा, तो बहुत अधिक आनंद हुआ। इससे यह भी ध्वनित हो रहा है कि प्रजा को इस बात का पता था कि राजा निःसंतान है, इतना विवाह करके भी, तो उन्हें भी इस बात का दुख था कि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। राजा बहुत अच्छे थे, जैसा कल उनके गुणों का वर्णन किया गया था कि उनमें उदारता थी, बड़े सुंदर थे, युवक थे, विद्यावान थे, स्त्री से धन से पूर्ण युक्त थे, उनके राज्य में जनता बहुत सुखी थी। और स्वयं ही राजा चित्रकेतु ने अंग्रेजी को बताया, लोकपालों को जो धन प्राप्त नहीं है वह सब मुझे प्राप्त है, परंतु फिर भी मुझे कोई सुख नहीं, ये सब मिल करके भी मुझको सुख नहीं दे रहे। तो राजा बहुत अच्छे थे, अतः जनता चाहती थी कि इनका उत्तराधिकारी कोई पुत्र हो, इच्छा थी। इसलिए जनता को बहुत आनंद हुआ राजकुमार के जन्म की बात सुनकर। हृष्टो राजा कुमारस्य स्नात सुचिर अलंकृत चैत्वास्य विपरीत कार्यामास जातकम्। तो राजा तो हृष्ट हुए ही, चित्रकेतु बहुत प्रसन्न हुए, हृष्ट हुए और तुरंत उन्होंने स्नान किया। यह क्रिया होती है जब बच्चे के भविष्य के लिए कुछ कर्म कराया जाता है उसके जन्म के समय, तो बच्चे का मंगल होता है और यह कर्तव्य पिता का होता है। माँ तो सूतिका गृह में रहती है, वह बच्चे को जन्म देती है, परंतु कुछ काल तक, कुछ दिनों तक वह सूतिका गृह में ही रहती है, प्रसव गृह में। तो बच्चे के लिए जो कुछ करना है, वैदिक संस्कार और स्वस्ति वासन वगैरह, दान देना ब्राह्मणों को, ये सब पिता भी करते हैं। तो राजा बहुत प्रसन्न थे और इसके बाद जब जन्म जन्म की बात सुने तो प्रसन्न हुए, इसके बाद स्नात स्नान किए, स्नान करके फिर शुचि हुए। शुचि का अर्थ होता है मंत्र आदि जप किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। तो स्नान अलग क्रिया है, स्नान करते ही हम पवित्र नहीं हो जाते, शुद्ध हो जाते हैं, तमोगुण निरस्त हो जाता है, सतगुण आ जाता है, परंतु शुचि होने के लिए मंत्र जप किया जाता है, संध्या उपासना आदि की जाती है, उससे अधिक शुद्धि होती है। सबसे बढ़ करके शुद्धि होती है भगवान का नाम लेने से, नहाते समय भी भगवान का नाम लेना चाहिए और नहाने के बाद तो कुछ देर बैठ करके भगवान का नाम जपना चाहिए, तब व्यक्ति शुद्ध होता है। और इसके बाद अलंकृत अलंकार धारण किए, नए नए वस्त्र आभूषण पहने, तो विप्रह आशीष वाचयित्वा, फिर श्रेष्ठ कोटि के ब्राह्मणों को बुलाए, वे ब्राह्मण आशीष वाचयित्वा स्वस्ति वाचन कर रहे थे, बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे, तो इस तरह ब्राह्मणों से जातकम कारयामासन। जातक का अर्थ होता है बच्चे के जन्म के समय जो उसके अभ्युदय के लिए कल्याण के लिए वैदिक कर्म किए जाते हैं उनको जातक कर्म कहते हैं, जात कर्म। जात का अर्थ जन्म हुआ और कर्म का अर्थ कर्म, जन्म हुए बच्चे के लिए कुछ किया जाता है, बच्चे को इसका पता नहीं होता है लेकिन पिताजी उसके लिए कुछ करते हैं तो बच्चे का आगे का जीवन समृद्ध होता है, धनी होता है, निरोग होता है, वह सफल होता है, यशस्वी होता है। इस तरह से संस्कारों का महत्व होता है। आजकल के लोग तो इन संस्कारों को मानते ही नहीं है कि बच्चा सुतिका गृह में है और पिता इधर ब्राह्मणों से मंत्र पढ़वा रहे हैं तो बच्चा भी इफेक्टेड होगा, इसको मूर्ख लोग समझ ही नहीं पाते। तो कम से कम शास्त्र के द्वारा जो यह अनुमोदित विचारधारा है थोड़ा कम करो, इसको तो स्वीकार करना चाहिए। सभी बातें हम समझ लेंगे तब करेंगे, यह बात नहीं है। बड़े लोग जो कार्य करते हैं और उसके अनुसार उनका जो उपदेश होता है तो उनके उपदेश को सुन करके करना चाहिए कार्य, सब जगह अपना एक्सपेरिमेंट नहीं भिड़ाना चाहिए। कुछ लोग कहते नहीं हम जब समझ जाएंगे कोई चीज तब करेंगे। कभी कभी उदाहरण हम लोग देते हैं, जैसे बिजली का तार है, ट्रांसफार्मर है, कहीं तो लिखा रहता है डेंजर, या निकट भी मत आइए छोड़े की तो बात दूर रही डेंजर। तो कोई व्यक्ति जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के फेर में होगा वो कहेगा नहीं क्या डेंजर है मैं छू कर देखूंगा, दूसरे लोग मना करेंगे नहीं नहीं छुओ मत छुओ मत, मान जाओ कि डेंजर है। नहीं, हम जब तक जानेंगे नहीं छू करके तब तक कैसे मान सकते हैं। आजकल के मूर्ख वैज्ञानिक लोग एक बात ये बात तो कहा कर, और उनके चेला तो घर घर में भरे पड़े वे सब जगह, हम जान जाएंगे तब माने, तो कह दिया जाए उसको कि ठीक है तब छू करके देखो, तो छू करके देखने के बाद रिपोर्ट भी नहीं देगा, हो सकता है खत्म हो जाए कि डेंजर था कि बहुत सुखद था। तो इस तरह से शास्त्रों में बहुत सी बातें हैं जो हमारे दिमाग में समझ में नहीं आती हैं लेकिन उसे अवश्य करना चाहिए। यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्य में वत्त, गीता में श्री भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप न त्याज्यम, इसे कभी त्यागना नहीं चाहिए, कार्य में वत्त करना ही चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। यज्ञ दान और तप, यज्ञ का अर्थ होता है भगवान की भक्ति, कीर्तन कराना, जैसे सामूहिक कीर्तन है इसको यज्ञ कहते हैं, और सामूहिक जो प्रसाद देना है वैष्णवों को ब्राह्मणों को गरीबों को इसको भी यज्ञ कहा जाता है। और दान, दान का अर्थ होता है किसी के दुख में सहायक होना, योग्य पात्र को कुछ देना। और तपह, तपह का अर्थ है एकादशी आदि का उपवास, व्रत करने में तप करने में इंद्रियों को कष्ट होता है लेकिन उस कष्ट को सहना बहुत अच्छा है। अब सब लोगों का अनुभव है वैष्णवों का कि एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को कितना मन प्रसन्न रहता है, केवल यह सोच करके भी कि मैंने एकादशी पूरा किया। ये सोच कर हमको तो पर्सनल बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं अनुमान करता हूँ सबको खुशी होती है। और जो एकादशी नहीं कर पाता है किसी तरह से, तो द्वादशी को विषाद में रहता है, आखिर दिन पार हो गया और मैं इस तरह से गिर करके पार किया। या एकादशी को जो लोग खूब खा करके पार किए हैं उनको द्वादशी को प्रसन्नता नहीं होगी, कोई अंतर ही नहीं लगेगा। तो उपवास करने का, व्रत करने का, तप करने का बड़ा सुखमय परिणाम होता है। तपस्या बहुत जरूरी है। तो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र के हित के लिए ब्राह्मणों से वैदिक मंत्र पढ़वा रहे थे, आशीर्वाद दिलवा रहे थे, जात कर्म और भी जो क्रियाएं थी सब करवा रहे थे। और ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया, इसका वर्णन करते हैं। तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो हिरण्यम स्वर्णम रजतम वालसांसि आभरणानि च ग्रामान हयान गजान प्रादर धेनूनाम अर्बुदान सर। राजा चित्रकेतु अपने पुत्र के हित के लिए ब्राह्मणों को सोने के आभूषण दान दे रहे थे, चांदी के बर्तन वगैरह जब दान दे रहे थे, बहुत से सुंदर सुंदर कपड़े अलंकार, गांव के गांव घोड़े गज और 6 अरब गाय दान दिए, अर्बुदा निषट 10 कोटि को 1 अरब कहते हैं संस्कृत में। तो महाराज ने 60 करोड़ गाय दान दिया, अर्बुदा निषट, हाँ 60 करोड़। कभी कभी इस बात को सुनकर लोग पूछते हैं इतनी गौवी कहाँ थी, कहाँ रहती थी और कितने ब्राह्मण ले गए, एक एक ब्राह्मण कितनी कितनी गाय ले गया, कहाँ रखता होगा, क्या करता। आजकल के लोग बहुत माथापच्ची करते हैं इस बात को। कभी कभी किसी बात का अर्थ होता है बहुत दान दिए, ये सभी भाषाओं में यह नियम है। और जैसे हम मान लीजिए कहीं गए हैं, तमाशा देख करके आए हैं, वहां बहुत लोग जुटते हैं, तो कोई मित्र पूछता है कितने आदमी जुटे थे, अरे वहां दुनिया भर के आदमी जुटे थे, दुनिया भर के, एक नगर का आदमी भी जुट जाए तो जगह नहीं रहेगी, दुनिया भर में इतने ही आदमी है। तो उसका मतलब होता है कि बहुत आदमी थे, कौन गिनने जाए। लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा नहीं छोड़ता है, आखिर 6 अरब ही क्यों कहे। 6 अरब गाय दान दिया चित्रकेतु महाराज ने अपने पुत्र के जन्मोत्सव में। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि 6 संख्यक कुछ लाख गाय दान दिया होगा उन्होंने। ये संस्कृत भाषा की एक अपनी पकड़ है इस तरह से। 6 अरब दान दिए, 6 करोड़ दान दिए, यह भी एक तरह से सही माना जा सकता है, जैसे टीकाकार कहते हैं, क्योंकि राजा एक ही जगह गाय रख करके दान नहीं कर रहे थे, पूरा भूमंडल में उनका राज्य था। तो जैसे चेक काट करके दे देते हैं किसी को, ऐसे कह दिए कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी गाय है इस जाति के ब्राह्मणों को दे दीजिए, तो उधर दूसरे जगह इतनी गाय हैं दे दो, ये दो। इस तरह से उन्होंने 6 अरब पूरा किया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब तो गायें कम होते जा रहे हैं, कसाई सब काटते जा रहे हैं, लेकिन पहले बहुत गायें थी, बहुत चारों तरफ हम लोगों के होश में भी बहुत गायें थी। अब तो बंबई जैसे शहर में तो देखना भी मुश्किल होगा, दर्शन भी होना कठिन है। कुत्ता घर घर में मिल जाएंगे लेकिन गाय नहीं मिलेंगे। चूहू बीच में टहलने जाने पर सवेरे सवेरे डॉग दर्शन हो जाता है, लेकिन गाय तो भूल करके नहीं दिखाई दे सकती। यही है राक्षसों की सभ्यता। पहले सर्वत्र गाय रहती थी, गायों की पूजा होती थी। तो महाराज चित्रकेतु ने गांव दान दिया, घोड़े हाथी सोने के आभूषण और डायरेक्ट सोना भी, रजत 6 अरब गाय दान की। बवर्ष काम अन्य शाम पर जन्म इव देहिनाम और अन्य शाम ब्राह्मणेभ्य इतराम, ब्राह्मणों को तो ये दान दिए, इसके अलावा अन्य शाम देहिनाम कामम बबर्स, अन्य जो भी मनुष्य थे या प्राणी थे उनकी जो इच्छा थी उनकी इच्छा के अनुसार बबर्स दान दिए। अब बबर्स का अर्थ है कि वर्षा किए, वर्षा कर रहे थे, इसका अर्थ कि देने में उदारता थी, इतनी खुशी थी पुत्र होने के कारण कि खूब दे रहे थे। जब अधिक कोई देता है तो उसको कहते वर्षा कर रहा है, तो वर्षा कर रहा है। यह बात नहीं थी कि विमान पर चढ़ करके ऊपर से कपड़ा और सोना आदि बरसा रहे थे, बबरसे का मतलब खूब उदार भाव से दे रहे। कैसे? परजन्य मेघ की तरह। देखा कभी कभी मेघ बरसने लगते हैं तो खूब बरसते, लोग नहीं चाहते हैं कि अब अधिक पानी है, फिर भी बरसते रहते हैं और भेद नहीं करते हैं, ऐसा भेद नहीं करते हैं कि ब्राह्मण का आंगन है इसमें ज्यादा वर्षा करना चाहिए और यह दूसरे का है, यह ऐसा है, इसमें भांग बोया गया है इसलिए इसको नहीं सींचना चाहिए, इसमें बासमती राइस है इसलिए इसमें ज्यादा बरसना चाहिए, वो ये नहीं देखते, समान भाव से वर्षा करता रहता। इस तरह से राजा भेदभाव नहीं कर रहे थे, जिसकी जो इच्छा थी वर्षा कर रहे थे। किस लिए वर्षा कर रहे थे? ये क्रिया विशेषण दिया जा रहा, धन्यम, उनका बेटा आगे चल करके धनी रहे, धनी हो, इसके लिए वर्षा कर रहे थे। ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कमाने से ही धनी नहीं होता है, वास्तव में धनी होता है पुण्य से, पहले का पुण्य किया रहता है उसी पुण्य से उसका धन टिकता है। इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसका फल तो बहुत बाद में मिलता है, लेकिन जिसके पास धन है सौभाग्य है तो उसके पूर्व पुण्य का सूचक जसस्यम, और वो इस नियत से दान दे रहे थे कि उनका बेटा आगे चल करके बहुत बड़ा बड़ा काम करे, उसका जस बढ़े, राजा बने और आयुष्यम, वह दीर्घ काल तक जीवित रहे। पहले के लोग किसी को आशीर्वाद देते थे तो यही कहते थे 100 वर्ष जियो, बहुत अधिक दिन जियो, चिरंजीव, चिरंजीवी भव इत्यादि। तो महाराज चित्रकेतु अपने पुत्र के लिए सब दे रहे, कुमारस्य धन्यम, कुमारस्य जसस्यम, कुमारस्य आयुष्यम। कुमार धनी रहे, जसस्वी रहे, बहुत दिन जिए, इसके लिए सब कर रहे थे। महामना, महामना का अर्थ है उनका मन बहुत बड़ा था, बहुत उदार थे, कृपणता नहीं कर रहे थे, या उन्होंने नियम नहीं बना लिया कि इतना ही दान करना है, खूब कर रहे थे। महामना का ये अर्थ, बहुत मन में आनंद छा गया था तो दे रहे थे, इस तरह से बहुत दान दिए, यह इनके आनंद की कथा कही जा रही है। तो अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण लब्धे थ राजर्ष तनय अनुदिनम पितुः जथा निःश्वस्य कृत छाप्ते धने स्नेहो नुवर्धत, जथा निःश्वस्य कृत छाप्ते धने स्नेहो वर्धते तद्वत् कृष्ण लब्धे तनय पितुः अनुदिनम स्नेहो अनुवर्धत। कोई व्यक्ति बहुत काल से निर्धन हो, निःस्व हो, स्व का अर्थ धन, जिसके पास धन नहीं है बहुत काल तक, और बहुत कठिनाई से बहुत कष्ट सह करके कोई धन उसको प्राप्त हो जाए तो उस कठिनता से प्राप्त धन में उस व्यक्ति का स्नेह दिन पर दिन बढ़ता जाता है। देखा गया बहुत कठिनाई से धन मिल गया है तो उस धन को खर्च नहीं करना चाहता है, बल्कि बैंक में डाल करके या जैसे तैसे उसको और बढ़ाना चाहता है, स्नेह बढ़ता जाता है उस धन में। यहां तक कि अपना शरीर भी कष्ट भोगे लेकिन खर्च करना नहीं चाहते, कोई लेर न ले, कोई व्यक्ति उसका छीन न ले या किसी भी तरह से उसके धन की हानि न हो, इसके लिए वो हमेशा चिंता करता है, रात दिन चिंतन में रहता है, अपने धन का ही चिंतन करता रहता है। शास्त्रों में इसको कई बार उल्लेख है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम से मांगते हैं तो कहते हैं कि कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमीदाम तुम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु हे राम। हे श्री राम, हे रघुनाथ, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है, आप हमको उसी तरह से प्रिय लगिए। इसका अर्थ है कि बहुत अधिक धन प्रिय लगता है। कठिनाई से प्राप्त धन में गरीब आदमी का जैसे दिन पर दिन स्नेह बढ़ता जाता है, स्नेह बढ़ता जाता है, उस तरह से बड़ी कठिनाई से और बहुत काल के बाद प्राप्त हुए अपने पुत्र में राजा चित्रकेतु का स्नेह अनुदिनम अनुवर्धत, अनुदिन बढ़ने लगा। स्टरडे से टुडे बढ़ गया ज्यादा, कल से आज बढ़ गया, आज से टुमारो बढ़ता जा रहा था, जनवरी की अपेक्षा फरवरी में और बढ़ गया। स्नेह करना चाहिए बेटा बेटी से, ये ठीक है, लेकिन रोज रोज उन्हीं में बढ़ाना नहीं चाहिए। पहले से जितना है उसमें से थोड़ा कम करने की चेष्टा करनी चाहिए, नहीं तो बहुत फजीहत होती है। जो वास्तव में पुत्र परिवार आदि की ममता में व्यक्ति रहता है वो बहुत दुखी रहता है, स्नेह दुख का कारण है। ऐसा शास्त्र कहता है स्नेह शब्द का अर्थ घी भी होता है, तेल, और स्नेह शब्द का अर्थ है प्रेम। तो जैसे जिस दीपक में स्नेह हमेशा रहेगा तो जलता रहेगा, जलता रहता है, उसी तरह जिस व्यक्ति के हृदय में स्नेह होता है पुत्र आदि के प्रति वो जलता रहता है जो क्षण की चिंता करके, अगर उसके लिए करना है ये न हो जाए ऐसा न हो जाए, रात दिन चिंता करता रहता, जलता रहता। तो राजा चित्रकेतु का बेहद स्नेह बढ़ता जा रहा था, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा, यह अच्छा नहीं है। पहले से जब जन्म हुआ उसी समय से स्नेह तो था ही पूरा पूरा, और अनुअवर्धत निरंतर बढ़ रहा था। चित्रकेतु का स्नेह तो बढ़ ही रहा था, और माँ का स्नेह तो माँ तो ऐसे ही स्नेहमयी होती है, तो उसके बारे में कह रहे हैं मातुस्तु अति तराम पुत्र स्नेहो मोह समुद्भव कृतद्यूते सपत्नी नाम प्रजा काम ज्वरो भवत। मातु कृत द्वितीय है, माता कृत द्वितीय का पुत्र अतितराम स्नेह अभवत, और कृत द्वितीय का अपने पुत्र में स्नेह तो था वो अतितराम, अतितराम बेहद बढ़ गया, अति को ही पार कर गया था, इतना अधिक स्नेह था। पुत्र में, स्त्री में या परिवार के लोगों में स्नेह करना चाहिए, ये शास्त्र भी कहता है और लोक द्वारा भी अनुमोदित है, बिना स्नेह के काम नहीं चलता है, लेकिन उस स्नेह की एक सीमा होनी चाहिए। कृतद्युति का और राजा चित्रकेतु का स्नेह अपने पुत्र में अतितराम, अतितराम हो गया। अति का अर्थ होता है बाउंड्री, सीमा, लिमिट, और तराम का तो अति को पार कर गया और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। एक तो अतिशय हो गया था और अभी बढ़ता जा रहा था। इस तरह से जो व्यक्ति किसी पुत्र आदि में इस तरह से आसक्त होता है तो उसको कितना दुख भोगना पड़ता है, यह कथा आ रही है। अच्छा, ये दो व्यक्ति तो बड़े आनंद में थे उस परिवार में, राजा चित्रकेतु और उनकी ज्येष्ठ पत्नी कृतद्युति, इनका स्नेह बढ़ता जा रहा था। कैसा स्नेह? मोह समुद्भव, मोहस्य समुद्भव जस्मिन तत् स्नेह, स्नेह बढ़ता जा रहा था, उस स्नेह से मोह और बढ़ता जा रहा था। मोह से स्नेह होता है और स्नेह से मोह और बढ़ता जाता है। मेरा बेटा है, आगे चलकर इसको ऐसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ये करूंगा, इसका विवाह करूंगा, मेरे बाद राजा बनेगा, ये करेगा वो करेगा, फिर मेरा पिंडदान करेगा। रात दिन यही सोचता रहता, बढ़ता अहम नीति जो मोह का अर्थ है पर्दा, अज्ञान और बढ़ता जा रहा था। समुद्भव, सम्यक उद्भव समुद्भव, अज्ञान का प्रसार स्नेह से होता है। व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहता है अपने स्वजन की, कैसे क्या होगा ये सब। तो मैं एक राजा हूं और मेरा यह बेटा है, यह है मोह अज्ञान, और इसमें वृद्धि होते जा रही थी शुरू से ही। कुछ लोग तो ऐसे नासमझी में रहते हैं, कभी पुत्र नहीं हुआ रहता है, गर्भ में रहता है, तभी से उसके लिए प्लान बनाते हैं, उसके लिए प्लान चालू करते हैं। अगर बेटा होगा तो इसके लिए इतना फिर धन कमाऊंगा, इधर फ्लैट ले दूंगा, इधर ये करूंगा, इधर ये करूंगा, और ऐसा करते करते। बल्कि कुछ बच्चे गर्भ में रहते हैं उसी समय उनका विवाह सोचने लगते हैं। ऐसा हुआ है, बच्ची भी गर्भ में है, बच्चा भी गर्भ में है, विवाह उनका चालू हो जाता है वचन द्वारा माता पिता के, यदि मेरा बेटा होगा आपकी बेटी होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा, और होता भी आगे चल करके ऐसा सुना गया है। कभी कभी बातें लोग की याद आ जाती है। हमारे गांव में एक विवाह हुआ एक लड़के का, बच्ची इतनी छोटी थी कि विवाह के बाद जब पालकी से आई तो उसको गोद में उठा करके एक माताजी घर में ले, हम लोग देख रहे थे उसे, बिल्कुल छोटी बच्ची। खैर ये तो कोई और चीज नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन इन दोनों का जो स्नेह था पुत्र के प्रति वो सीमा पार कर रहा था, इसीलिए दुख भी सीमा पार करेगा। स्नेह जितना ही है उतना ही दुख होगा। तो ये दोनों सुख में थे, और सपत्नी ना जो कृतदीप्ति की सौतेल थी, कई लाख 10 लाख थी, तो उन लोगों में ज्वर आ गया। ज्वर का अर्थ ताप। उधर आनंद जितना ही बढ़ रहा था स्नेह उन लोगों का, उतना ही उन लोगों का ताप बढ़ रहा था। और किसी प्रजा काम ज्वर, प्रजा काम ज्वर बढ़ रहा था। कृतदीप्ति की भरी हुई गोद देख करके, उसके गोद में बच्चा देख करके, अब इन लोगों के मन में प्रजा काम पुत्र प्राप्ति की कामना इतनी ज्यादा थी कि उससे वो जल रही थी। और राजा से उन लोगों ने अनुरोध भी किया कि जैसे तुमने उसको पुत्र दिया है ऋषि के द्वारा, हम सबको पुत्र दो, यज्ञ कराओ। वो तो एक घटना थी, ऋषि की कृपा हो जाती, अब सब रोज रोज कराने से तो होने वाला था नहीं, और न तो ऋषि ऐसा करते। अगर उनको देना होता उसी समय तो 10 लाख खंड बांट कर चरु खिला दिए होते हो जाते। लेकिन वो भी चाहते थे कि इन लोगों को ज्ञान देना। तो सपत्नी नाम प्रजा काम ज्वरो भवत, ये काम जो है हृदय में जो लालसा है किसी चीज की प्राप्ति की, वह एक ज्वर है। हम लोग इस शरीर में ज्वर का अनुभव तो करते हैं, इसको थर्मामीटर नाप लेता है कि इतना ज्वर है, इतना डिग्री है, लेकिन मन में कामना का कितना ज्वर है इसको नापा नहीं जा सकता। बहुत कामनाएं होती हैं जीव की, और जब तक कामना है तब तक जीव जलता रहता है। तो ये दोनों सुख में थे और उधर 10 लाख दुख में थे। रोज आपस में मीटिंग इष्ट गोष्ठी उनकी होती रहती थी स्त्रियों की, और हमेशा जलती रहती थी कि हमको नहीं है, तुम हमको नहीं है। तो जलते जलते यह तो बात ठीक है कि भाई हमको कामना अगर हो कि पुत्र हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसको हुआ हमको नहीं हुआ यही मूल आधार था। यदि किसी को नहीं हुआ था तो इतना दुख नहीं था। पहले तो सब ऐसे ही थे, किसी को नहीं था तो दुख भी नहीं था, तो कोई ऐसा कामना नहीं थी और बहुत दुख नहीं था। लेकिन एक को बच्चा मिल गया और ये सब बंधिया रह गई, इससे उनको बहुत दुख हो रहा था। एक तो ऐसे ही शौत होने के कारण दुख तो था और स्वाभाविक चूंकि विवाह हुआ है, विवाहिता पत्नियां हैं तो उनको इच्छा थी ही कि हमको पुत्र हो, पुत्र नहीं हो मिला, नहीं हुआ तो उनको इस बात का दुख था। दूसरा दुख क्या था, चित्र के तो रति प्रीतिर जथा दारे प्रजावतु न तथा ने सुसंजज्ञ बालम लाल तौन वह। चित्रकेतु की जथा प्रजावति दारे अति प्रीति, पुत्रवती अपनी पत्नी में जितनी प्रीति चित्रकेतु की रहती थी, जितनी प्रसन्नता होती थी, न तथा अंडेश अन्य में जिनको पुत्र नहीं था उनमें अब उसका प्रेम रहा नहीं। देखिए राजा की गलती चालू हुई है, अपनी पत्नी में जो पुत्रवती थी उसमें कैसी प्रीति थी, अति प्रीति। यहां भी अति शब्द का प्रयोग किया है, अति प्रीति। यह ठीक है अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए लेकिन अति प्रीति थी। कृतदीति में और अति प्रीति का लक्षण यह था, बालम लालयतोन महम, ये कहीं से भी घूम कर आते थे राज दरबार से या कहीं से तो सीधे कृतदीति के घर में जाते थे और बच्चा को उठाकर चुमने लगते थे, उत्तोलन करते थे, पूछते थे बच्चा कैसा है, ठीक है ठीक है। इस कारण से जब बच्चे में चूंकि ममता थी उनकी तो बच्चे के कारण बच्चे वाली भी ममता उनकी ज्यादा थी, बहुत अधिक हो गई, बहुत अधिक प्रीति हो गई, अति प्रीति। इसका अर्थ है कि कृतदूती के साथ बैठने में, बात करने में, उसके साथ रहने में ही उनको सुख मिलता था, आनंद मिलता था और बाकी उनकी पत्नियां और भी हैं कि नहीं ये याद तक नहीं आती थी और इस बात का बहुत दुख होता है मनुष्यों को कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से बात करे, प्रेम से बोले, बैठे और दूसरे का तिरस्कार करे और अभी अपना स्वजन हो तो बहुत दुख की बात है। और उसमें भी अपनी पत्नियां जिनमें परस्पर वैसे ही असूया रहती है, द्वेष रहता है और उस पर पति अगर एक के साथ बैठे, बात करे, खूब हाहा करे और जब आवे तब उसी को कुछ वस्तु दे, हरे कृष्ण, कृतदीति को ही कुछ देना है लेना है, तो ये सब अति प्रीति का लक्षण है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृतदूती के साथ रहने में ही सुख मिलता था और अति प्रीति थी, सीमा पार कर गई थी प्रीति के और उसके सामने रह करके हमेशा बच्चे को गोद में लेना, खिलाना पिलाना, उसके जोग से उनकी चिंता करना, ये सब करते थे और अन्य स्त्रियों से न तथा अन्य सु अन्य स्त्रियों से उनको कोई मतलब ही नहीं। शायद कृतदूती को रोज ही गहना लाते होंगे, साड़ी लाते होंगे लेकिन उन लोगों को 10 बरस पर भी नहीं पूछते होंगे कि उनकी साड़ी की क्या दशा है, हरियाली तीज है कि दिवाली है, याद भी नहीं आती थी। और कृतदूती के लिए तो रोज दिवाली ही रहती थी। इस तरह से राजा की दशा हो गई। तो ताह पर्व तप्यनात्मान गर्भ यंत्र भेसुया आन पत्ते में दुख है नाग्यो अनादरण। तो इस दुख में तो वो थी ही, रोज रोज तो अपने पति की दशा को देखती थी कि इस तरह से पक्षपात कर रहा है, अपने विषय में अपनी निंदा करते हुए ग्रहण अपने को धिकारते हुए बहुत तप्त रहती थी। तह पर्व तप्य बहुत दुख में रहती थी और कृतदूती के प्रति असूया हुई, दाह हुआ तो अपने को धिकारती थी। एक तो दुख था पुत्र नहीं होने का, अनपत्य न दुख है न अनपत्य, अपत्य नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ कोई गर्भ से, तो समाज में ऐसे ही आदमी बांझ का मुख देखना नहीं चाहता, लोक में अभी भी प्रचलित एक तो इस बात का दुख समाज में धिक्कारा जा रहा था और दूसरा